নিতে হবে, পুলকা শরীরা হরি হরি বলিতে, নয়নে ববে নি গৌরাঙ্গা বলিতে হবে, পুলকা শরীরা হরি হরি বলিতে, নয়নে ববে নি আর কবে নিতাই চাঁদে, করুণা হইবে সংসার বাসন মোরা, কবে তুচ্ছ হইবে আর কবে নিতাই চাঁদে, করুণা হইবে সংসার বাসন মোরা, কবে তুচ্ছ হইবে। গৌরাঙ্গা বলিতে হবে, পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে, নয়নে ববে নি গৌরাঙ্গা বলিতে হবে, পুলক শরীরা হরি বলিতে, নয়নে ববে বিষয়া ছাড়িয়া, কবে শুদ্ধ হবে মানা, কবে হামাহেরিব শ্রী বৃন্দাবন। বিষয়া ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মানা, কবে আমাহেরব শ্রী বৃন্দাবন। বিষয়া ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মানা, কবে আমাহেরব শ্রী বৃন্দাবন। কবে আমাহেরব শ্রী বৃন্দাবন। গৌরাঙ্গা বলিতে হবে, পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে, নয়নে ববে নি গৌরাঙ্গা। হরি হরি বলিতে, নয়নে ববে রূপর গুণত পদে, হইবে আকুতি কবে হাম বুঝাবো সে যুগল পিরিতি। রূপর নত পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝাবো সে যুগল পিরিতি। রূপর গুণত পদে রহু মোরাশা, প্রার্থনা করো এ সদা নরোত্তম দাস। রূপ রঘুনাথ পদে रहो मोर आशा, प्रार्थना करो ऐसा मदासा। रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा, प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा, प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास। गौरांग बोलते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयने बबेनी। गौरांग बोलते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलते नयने बबेनी। रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा, प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दास। रूप रहो मोर आशा, रूप रघुनाथ पदे रहो मोर आशा, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। पदे रहो मोर आशा, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। श्रील नरोत्तम दास आविर्भाव दिवस महा महोत्सव की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं, यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, बहुत ही शुभ और पावन दिवस है ये। नरोत्तम दास ठाकुर जी जिनके चरित्र के बारे में आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे, जो भी मैंने राधानाथ स्वामी महाराज के मुख से जो कुछ भी सुना है, पूरा तो नहीं बता सकता। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार जब छोटे से ग्रुप ब्रह्मचारी ग्रुप को खेतुरी बांग्लादेश यात्रा पे लेकर गए थे, एक ही बार हुआ है यात्रा अभी तक, तो उस बांग्लादेश यात्रा में खेतुरी ग्राम में गए थे जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ था। वहाँ पर उन्होंने, इंद्रद्युम्न महाराज भी उस यात्रा में थे, वहाँ पर महाराज ने 6 घंटे नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर कहा है, तो उतना तो हम नहीं बता सकते। हम 1 घंटे में जितना होगा उतना उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करेंगे। मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनके बारे में चर्चा करने के लिए, लेकिन फिर भी सेवा के तौर पर जो मुझे वैष्णव ने आज्ञा दी है उसके हिसाब से मैं कुछ प्रयास करूँगा। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर की कहानी उनके जन्म होने के पूर्व से चालू हो जाती है। जन्म तो हुआ चैतन्य महाप्रभु के मतलब अंतर्धान होने के बाद, 100 साल के बाद नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म हुआ था, मतलब काफी साल के बाद। लेकिन उसके पहले चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से वृंदावन यात्रा पे आए थे, एक बार नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर ऐसे सब अपने पार्षद को लेकर आए थे, तो जब वो वृंदावन जा रहे थे तो बीच पर वो रामकेली पे रुक गए। क्यों? रामकेली में उनको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कृपा देनी थी। हाँ, तो आए रुके, तो वहाँ पर ये दाबीर खास साकर मलिक आते हैं, उनको मिलते हैं, उनके मिलकर फिर उनसे वो दीक्षा ले लेते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नाम मिल जाता है। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु जब वो रामकेली में रुकते हैं तो वहाँ पर एक पद्मा नदी बहती रहती है, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जाते हैं, पद्मा नदी में पार्षदों के साथ जाते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु अपने नित्यानंद प्रभु को पूछते, अरे नित्य जरा बताओ, हम लोग कुछ समय के बाद चले जाएंगे तो हरि नाम का जो प्रचार है कौन करेगा? कैसे भगवान के गुणगान चारों ओर कैसे फैलेंगे? कौन किसे हमें उत्तरदायित्व सौंपेंगे? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, आप तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको उत्तर भी पता होगा, आप ही बताइए कौन करेगा, मैं क्या बताऊं? तो फिर नित्यानंद प्रभु ऐसे बोलते तो चैतन्य महाप्रभु सोचते, हाँ मैं बताता हूँ। फिर वो लोग जाते हैं, ये पद्मा नदी के पास जाते हैं, जाते हैं अचानक से चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगते, नरोत्तम 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 नरोत्तम, जोर जोर से चिल्लाते। तो लोग सोचते क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु चिल्लाते हैं, अचानक से नाचने लगते हैं, नीचे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर नरोत्तम नरोत्तम चिल्लाते हैं। लोग सोचते क्या हो गया, ये कौन सा आवेश है, चैतन्य महाप्रभु कौन सा आवेश आज आ गया है, क्या हो गया इन्हें? तो फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ समय बाद अपने बाहरी अवस्था पर आते हैं, चेतना में आते हैं, और फिर नित्यानंद प्रभु को साइड में लेके जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते, क्या है ये, क्या चल रहा था आपका, कुछ ऐसा अचानक से आप ऐसे कुछ कर रहे थे? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते, नहीं, एक बहुत बड़ा व्यक्ति आने वाला है, प्रकट होने वाला है, नरोत्तम दास ठाकुर, जिसके लिए मैं, मेरा जो प्रेम का आवेश है मेरे अंदर, जो कृष्ण भक्ति का, जो कृष्ण प्रेम का जो आवेश है, मैं उसके लिए इस पद्मा नदी पर छोड़ के जाने वाला हूं। तो ऐसे बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है? तो नित्यानंद प्रभु बहुत खुश होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला है जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने प्रेम के आवेश किसको देना चाहते हैं, तो मतलब कितना बड़ा व्यक्ति होगा वो। तो फिर ठीक है, फिर उस दिन जब चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में घुसते हैं नहाने स्नान करने के लिए, जब स्नान करने के लिए जब अंदर प्रवेश करते हैं तो पद्मा नदी पे बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ जाती है, बहुत जोर से बहने लगता है और सब उथल पुथल होने लगता है। तो सोचते हैं क्या हो रहा है ये नदी में, तो अचानक से पद्मा नदी की जो साक्षात स्वरूपिणी देवी है, पद्मा देवी नदी की स्वरूपिणी, वहां पर प्रकट हो जाती है। बोलती है, भगवान चैतन्य महाप्रभु बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, क्यों आपने मुझे बुलाया है? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आज से कुछ साल के बाद यहां पर एक व्यक्ति नरोत्तम प्रकट होने वाला है, तो उसे मैं अपना ये प्रेम का जो आवेश है मैं उसे देना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारे पानी में तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे पास मैं सौंप के जाने वाला हूं, ये तुम्हें उसे देना है जब वो आएगा। तो पद्मा नदी बोलती है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा नरोत्तम कौन है, बहुत लोग आते हैं नहाते जाते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा नरोत्तम कौन है? तो चैतन्य महा बोलते, नहीं, जैसे आज मैंने एंटर मारा आपके नदी पर, जब मैंने प्रवेश किया तो जिस प्रकार की लहरें उछल 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 रही थी, उसी प्रकार से जब वो नरोत्तम आपके नदी पर प्रवेश करेंगे तब आपके नदी आपके जो पानी है उथल पुथल करने लगे, तब समझ जाना ये वही नरोत्तम है और उसे ये प्रेम का आवेश सौंप देना। ठीक है बोलते हो, फिर चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम के आवेश को पद्मा नदी के पास सौंप देते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ सालों के पश्चात जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो जाते हैं, नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं, सब जाने के बाद खेतुरी गांव में, खेतुरी गांव के मतलब मुख्य राजा जो थे उनका नाम कृष्णानंद राय और उनकी पत्नी नारायणी, ये दोनों बहुत ही बड़े मतलब भगवान के भक्त थे। भक्ति नहीं, वो राजा मतलब भगवान के सही प्रतिनिधि भी थे, जो अपने प्रजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते थे, उनको जो चाहिए था सब प्रदान करते थे वो। तो इस प्रकार से वो बहुत अच्छी तरह से उस खेतुरी ग्राम में निवास कर रहे थे, वैष्णवों को मान सम्मान देते थे, उनके लिए जो भी आवश्यक चीजें होती थी वस्तुएं प्रदान करते थे, भक्ति का प्रचार करने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता हो सब सब में वो मदद करते थे। तो ऐसे करते करते उन्हें एक दिन ऐसा लगा कि अरे मेरा तो उम्र बढ़ती जा रहा है पर कोई संतान हो नहीं रही है, तो क्या किया जाए, तो चलो तपस्या करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के तपस्या करते हैं, भगवान के मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। सो बहुत कुछ ऐसे करते करते रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। एक दिन कृष्णानंद राय ऐसे वो दुखी होकर चल रहे, कौन मैं किसे ये मेरा पूरा जो संपत्ति है, मेरा जो ऐश्वर्य है, मैं किसे दूं, ये जिम्मेदारी मैं किसे सौंपूं, ऐसे सोचकर वो चलते रहते हैं। तो अचानक से उन्हें एक आवाज आती है, हे कृष्णानंद राय, शीघ्र ही तुम्हारे घर पर एक दिव्य पुरुष का जन्म होगा। तो वो सोचते हैं अरे ये मैं सपना देखा कि सच में आवाज सुनाई दिया मुझे किधर से। तो पीछे मुड़ के देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, कुछ नहीं है। तो सोचते हैं शायद मैं सो गया था, कि चलते चलते सो तो नहीं गया ना, चलते चलते तो कोई सोएगा नहीं, तो मैं सचमुच फिर आकाशवाणी हुई है इसका मतलब, चलो जाकर मैं मेरी पत्नी को बताता हूँ। घर दौड़े दौड़े जाते हैं और नारायणी के पास जाते हैं। तो नारायणी के पास जाने के पहले नारायणी ऐसे आंख खुला करके इनको जैसे देखती रहती है। तो बोलते ये क्यों ऐसे मुझे देख रही है, अचंभित तो होकर मुझे क्यों देख रही है, इसे पता चल गया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो बोलते क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर घूर के देख रही हो। तो नारायणी बोलती है मुझे एक सपना आया। क्या तुम्हें भी सपना आया, मुझे तो सपना नहीं आया लेकिन कुछ सुनाई दिया। अच्छा तो क्या सुनाई दिया, नहीं, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या सपना आया पहले वो बताओ। तो नारायणी बोलती है कि मैं जब सो रही थी तब मुझे एक सपना आया कि एक सुनहरे रंग के एक व्यक्ति महापुरुष मेरे सामने प्रकट हुए और वो बोले कि आपके घर पे एक व्यक्ति, एक दिव्य पुरुष जन्म लेने वाला है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का आवेश होगा और उनका नाम नरोत्तम होगा। तो ऐसे उनके सपने में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर बोल के जाते। तो ये बोलते मुझे भी ऐसे ही कुछ सपना आया कि हमारे घर पर कोई दिव्य पुरुष का जन्म होने वाला है जिनका नाम नरोत्तम होगा, ऐसे बोले। अरे तो फिर वो लोग प्रतीक्षा करते हैं कब वो दिन आएगा जब हमारे घर पर नरोत्तम ऐसे परम पुरुष व्यक्ति का जन्म होगा। तो आज ही के दिन माघ महीने के पूर्णिमा तिथि पे शुक्ल पक्ष में नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ खेतुरी ग्राम में कृष्णानंद राय और नारायणी माता जी के घर पे। नरोत्तम दास ठाकुर की जय। जिस नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ तो उन्हें देखने के लिए बड़े बड़े देवी देवता का आने लगे, हाँ मतलब स्वरूप बदलकर। और ये लोग सोचते थे ये कौन है, हमने तो कभी खेतुरी ग्राम में इनको कभी देखा ही नहीं है, ये नए नए लोग कौन आ रहे जा रहे, तो उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन देवतागण देवीगण सब आते थे और देखकर दर्शन करके जाते नरोत्तम दास ठाकुर के, तो ऐसे सब आने लगे। तो एक बार उनका नामकरण का संस्कार करना था तो उन्होंने बुलाया लोगों को, क्या नामकरण नाम सब लोगों को गाँव वालों को इकट्ठा किया क्योंकि राजा का बेटा है तो सब गाँव वाले आएंगे, सब लोग आए थे नामकरण। तो एक ज्योतिष को बुलाया, बोले नाम क्या दिया जाए। तो वो उनका हॉरोस्कोप देखते हैं और बोलते हैं कि इनके नाम में न र त होना ही चाहिए, न र त ऐसे होना ही चाहिए। बोलते हैं तो क्या रखा जाए क्या रखा जाए, सब लोग सोचते रहते हैं। तब पीछे से कोई बोलता है अरे नरोत्तम रख दो। अरे नरोत्तम कौन बोला नरोत्तम रख दो करके। तो देखते नरोत्तम, तुम नरोत्तम में तो न र त तीनों है तो बराबर है, अच्छा नाम है, चलो नरोत्तम रख देते हैं। तो उनका नाम रख दिया गया नरोत्तम। लेकिन उनके माता पिता उनको बोलते थे नरू नरू बुलाते थे, ओ नरू इधर आओ, ओ नरू ये खाना खा लो, ओ नरू कपड़े पहन लो, ऐसे उनको नरू नरू करके बुलाते थे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर फिर थोड़े बड़े हुए तो उनका अन्नप्राशन संस्कार करना था अभी नेक्स्ट। तो अन्नप्राशन संस्कार करने के लिए वापस उनकी माता ज्योति अपने हाथ से सब गाँव वालों को बुलाती है, सबके सामने अपने हाथों से बनाया हुआ खीर, गरम गरम खीर ठंडा करके, गरम गरम के तो ठंडा करके लेके आके अपने बच्चों को खिलाने के लिए आती है। तो जैसे उनके मुंह के पास लेके जाती है, वो मुंह फेर देते हैं, ये बाजू कर देते हैं। तो फिर दूसरी बार देने आती है तो वापस मुंह फेर लेते हैं, तो बार बार करते हैं। मतलब क्यों? तो कुछ लोग बोलते हैं जरा सूंघ कर देखो, कहीं ये खीर जल तो नहीं गया है, इसलिए उनको पसंद नहीं आ रहे, वो सूंघ कर देखो। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं इसको फेंक देती हूँ, नया बना के लाती हूँ। फिर वापस नया बना के लाती है, नया बना के वापस देती है, वापस मुंह फेर लेते हैं। तो बार बार मुंह फेर लेते तो क्या हो गया? तो एक ब्राह्मण रहते बोलते हैं, अरे भाई क्या आपने इसको भगवान को भोग लगाया क्या? अरे घाई घाई में मैं भूल गई, मैं चलो भगवान को मैं भोग लगा के आती हूँ। तो जाती है भगवान को भोग लगाती है, और भोग लगा कर जब लाकर इनको देती है तो तुरंत नरोत्तम दास ठाकुर खाकर आनंद में हंसते रहते हैं। तो बोलते नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे महापुरुष है, बिना भगवान को भोग खाए बचपन से कुछ भी मुंह में नहीं लेते थे, ग्रहण नहीं करते थे, ऐसे व्यक्ति थे वो। तो ऐसे तो उनका गुणगान होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई भी वस्तु भगवान को नहीं, एक्चुअली श्री प्रभुपाद के शिष्य को एक जगह पर क्लास के लिए बुलाया गया था, तो बड़े बड़े ऑडियंस सब लोग खड़े थे। तो उसमें प्रभुपाद जी के शिष्य जो फॉरिनर्स थे, उन्होंने बहुत ऐसे बहुत, वो लोग तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, तो सीधा बोल दिया अगर बिना भगवान को भोग लगाए खाते तो वो सुअर के विष्ठा को खा रहे के समान है, ऐसे बोल देते। तो ये जब सुनते हैं तो लोग बोलते हैं ये क्या है भाई, प्रभुपाद जी भी बोलते हैं लेकिन ये लोग तो बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। ठीक है भोग लगा के खाना है हम मानते हैं, लेकिन इतना भी ऐसा भी नहीं कि सुअर के विष्ठा के बराबर है, हमको प्रभुपाद को जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। तो सीधा प्रभुपाद के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी को बोलते हैं प्रभुपाद जी आपके शिष्य है ना थोड़ा ज्यादा ही एक्सैजरेट करके बोल देते हैं, छोटा ठीक है मानता हूँ भक्ति है लेकिन इतना ज्यादा क्या भाई क्या हो गया? नहीं वो आज बोल रहे थे कि भगवान को भोग लगाए बिना अगर कुछ ग्रहण करते हैं तो सुअर के विष्ठा के बराबर, ऐसे बोल दिया क्या ऐसा कहा? हाँ उनको बुलाओ। तो ये जाते हैं, जाओ भाई तुमको बुलाया पट्टी बढ़ने वाली है जाओ। तो शिष्य लोग आते हैं अंदर, आकर पूछते हैं हाँ प्रभुपाद जी तुमने क्या कहा क्लास में? क्या प्रभुपाद तुमने कहा कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाएंगे तो सुअर के विष्ठा के बराबर है? हाँ प्रभुपाद मैंने कहा ऐसे। बहुत सही कहा, बराबर कहा, अभी तो ये उदाहरण मैं भी यूज करूंगा मेरे क्लासों में, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको। तो मतलब इतने पक्के होते हैं भगवान के भक्त कि कोई भी चीज भगवान को अर्पण किए बिना खाते नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी ने था। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे वो बिना भगवान को भोग लगाए बिना बचपन से ही कुछ नहीं खाते थे, ऐसे चलता गया उनका। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते गए वो खेलते थे, लेकिन बच्चों के साथ कुछ ऐसे वैसे कुछ गेम्स नहीं खेलते थे, थोड़ा बहुत मतलब भगवान के कृष्ण लीलाओं के बारे में चर्चा करना, उसके बारे में नाटक करना, ऐसे उनका लीला चलता रहता था। और उनको बच्चों से ज्यादा संतों से बहुत लगाव था, जब भी संत को देखते थे संत के पास जाते थे, उनके साथ उनके पास जाकर उनको सेवा करते थे, उनको खाना परोसते, उनके चरण कमलों को दबा देते, तो ऐसे वो सेवा में हमेशा लगे रहते थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो उनकी माताओं को थोड़ा डाउट, माता पिता को थोड़ा डर लगा, अरे क्या है बच्चा है, बच्चा अपने बिरादरी के बच्चों के साथ घूमना फिरना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, तो संतों के साथ ही ज्यादा लगाव रख रहा है, क्या होएगा अगर ये थोड़ा ज्यादा संतों के पास जाता रहेगा तो फिर कहीं ये हमको छोड़कर चले ना जाए, चैतन्य महाप्रभु जैसा नित्यानंद प्रभु जैसा हो ना जाए, ऐसे उनके मन में थोड़ा डर आने लगा। तो बोलते ठीक है हम एक काम करते हैं, नवदीप से एक बड़े संत को बुलाएंगे, क्योंकि कृष्णानंद राय और नारायणी तो वैष्णव की सेवा तो हमेशा करते रहते थे। तो बोले चलो नवदीप से कोई बड़े संत को बुलाते हैं और थोड़ा उनके द्वारा कुछ प्रवचन वचन रखते हैं। तो वो लेके आते हैं बड़े संत को, वो संत आते हैं, संत आते ही वो कहानी चैतन्य महाप्रभु के बारे में मतलब उनके बारे में कथा करना था, और वो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में कहानी बोलते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे? राजा के पुत्र थे और उनको कोई लगाव नहीं था इस भौतिक संसार से। फिर चैतन्य महाप्रभु से जब लगाव उनका बढ़ गया तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चैतन्य महाप्रभु चले, ऐसे कहानी बताते हैं। तो उनकी माताओं को और डर लग जाता है, अरे बाबा हम तो इसके मन को बदलने के लिए साधु को बुलाया था, अभी इनके लिए प्रवचन सुन के तो इनका मन तो और विचलित हो जाएगा, ये तो उन्हीं के पद पर चल जाएगा। तो फिर बाद में वो क्या करती थी, उसको मेकअप करने के लिए उनको अच्छे अच्छे पकवान लाकर खिलाती थी, ये खाओ वो खाओ, तो बोलते थे रघुनाथ दास गोस्वामी तो ये नहीं खाते थे, आप मुझे क्यों ये खिला रही हो? तो बोलते अरे वो रघुनाथ दास गोस्वामी है, तुम नरू हो खाओ ये। नहीं 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 मैं ये नहीं खाऊंगा। फिर बाद में वो कुछ अच्छे अच्छे कपड़े ला कर देते थे, ये पहनो। तो बोले नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ क्या खा था, भाल ना खाइबो और भाल ना परिबो, मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अच्छे खाने नहीं खाना चाहिए, सादा कपड़ा और सादा खाना खाना चाहिए, भोजन लेना चाहिए, तो ये आप मुझे इतने ऑपुलेंट क्यों खिला रही हो? तो बोलते अरे वो रघुनाथ दास गोस्वामी है, तुम मेरे नरु हो, तुम राजा के पुत्र हो, खाओ पहनो। नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा, मैंने पहनूंगा, ऐसे करके वो बोलते रहे। मतलब उनका हृदय पूरा चैतन्य महाप्रभु के समर्पित हो गया था, लेकिन अभी तक वो आगे बढ़ा नहीं था। फिर एक बार वहां पर एक एक भक्त आते हैं, बहुत बड़े भक्त रहते हैं वो, कृष्णदास, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पार्षद रहते हैं वो, कृष्णदास करके वहां पर आते हैं। तो कृष्णदास जब वहां पर आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जब सॉरी नरोत्तम दास ठाकुर जब वो कृष्णदास को मिलते हैं तो कृष्णदास के मुख से वो चैतन्य चरितामृत सुनते हैं, मतलब चैतन्य लीलाओं के बारे में सुनते हैं। तो वो जब सुनते हैं उसमें वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कैसे कैसी लीलाएं की, क्या क्या किए, वो सब सुनते हैं। सुनने के बाद बताते हैं कि श्रीनिवास आचार्य के बारे में बताते हैं, श्रीनिवास आचार्य वो भी बड़े संत है, उन्हें भी मिलना था चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में गए, वहां पर जाके देखा तो चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए थे, तो उनको बहुत दुख हुआ। फिर वो बोले चलो मैं नवदीप जाता हूँ नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए। नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए गए तब नित्यानंद प्रभु भी चल बसे, तो उनके हृदय में बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे है, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं चैतन्य महाप्रभु को मिल नहीं पाया, नित्यानंद प्रभु को मिल नहीं पाया, मैं कैसे दुर्भाग्य हूँ, कैसे। तो रोने लगे। तो ये सुनकर नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में वो भी वो सोचने लगते मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु को मिल नहीं पाया, मैं नित्यानंद प्रभु को मिल नहीं पाया, मैं चैतन्य महाप्रभु पार्षदों को मिल नहीं पाया, उनकी लीलाओं को देख नहीं पाया, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, ऐसे रखे वो रोने लगे। फिर वो बोलने लगे नित्यानंद चैतन्य नित्यानंद, ऐसे बोलते रहते थे वो। तब एक दिन उनके ये भगवान के नित्य चिंतन से एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आए और उनको बोलते हैं नरोत्तम मैं तुम्हारी तीव्रता से, भक्ति की तीव्रता से बहुत प्रसन्न हूं, शीघ्र ही नित्यानंद प्रभु आकर तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे बोलकर चैतन्य महाप्रभु सपने से चले जाते। फिर वो देखते नित्यानंद प्रभु कब आएंगे, वो वेट करते रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु एक दिन अचानक से उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं नरोत्तम, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी में अपने प्रेम का आवेश को वहां पर नदी में सौंप कर गए थे तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं तुम्हें ही नरोत्तम दास ठाकुर को गाइड करना है यहां पर लाने के लिए। और एक एस्ट्रोलॉजर जब नामकरण संस्कार करने के लिए तो वो बोलता है इनके बारे में सब गुणगान करके ये ऐसा पुरुष होगा महापुरुष होगा ऐसा बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि ये जब पद्मा नदी में जाकर स्नान करेंगे उसके बाद इनका लाइफ चेंज हो जाएगा, मतलब इनके जो पूरा है इनका जो आवेश है पूरा बदल जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब पहले बताया गया है। तो नित्यानंद प्रभु बोलते नित्यानंद प्रभु को सपने में आएंगे चैतन्य महाप्रभु बोलते, तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु एक दिन सपने में आते और बोलते हैं नरोत्तम तुम पद्मा नदी में जाकर एक बार स्नान कर लो, तुम्हारे लिए कुछ चैतन्य महाप्रभु ने कुछ गिफ्ट रखा है वहां पर। तो नरोत्तम सुनते हैं तो बोलते चलो जाता हूं, तो जाते हैं सीधा। तो नहीं एक्चुअली हाँ, तो क्या होता है कि नरोत्तम दास ठाकुर कभी भी भाग जाएंगे ऐसे उनके माता पिता को डर रहता है, अपने कृष्णानंद राय और नारायणी को डर रहता है कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा सुन लिए कभी भी भाग सकते हैं, तो इसलिए इनको कड़ी पहरेदारी रखा जाए। तो इतने सिक्योरिटी गार्ड सोल्जर्स इतने रखे रहते हैं कि कोई अंदर जा ही नहीं बाहर निकल ही नहीं सकता है। तो नित्यानंद प्रभु के सपने में आते बोलते जाओ नदी में जाकर नहाओ पद्मा नदी में, तो बोलते कैसे जाओ इतने पहरेदारी है। चिंता मत करो अभी जाकर खिड़की खोल के देखो, जब खिड़की खोल के देखते हैं सब पहरेदार सो गए रहते हैं, तो सो गए चलो अच्छी राय में अभी निकल सकते हैं। तो सीधे जाते भागकर जाते और पद्मा नदी में प्रवेश करते। जैसे पद्मा नदी में वो प्रवेश करते हैं वापस पद्मा नदी की लहरें बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ जाती है, पद्मा नदी बहुत जोर जोर से बहने लगती है, उथल पुथल होने लगता है। तब पद्मा नदी की जो देवी है अधिष्ठात्री देवता देवी जो है वो वहां पर प्रकट हो जाती है, पद्मा नदी की देवी, और वो आकर बोलती है हे नरोत्तम चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जब तुम आओगे मेरे नदी में ऐसे उथल पुथल होगी, वैसे ही हो गया है। और मैं तुम्हें वो चैतन्य महाप्रभु का जो गिफ्ट है, जो तोहफा है, मैं तुम्हें देना चाहती हूं। ऐसे कर वो अपने अंदर से एक सुनहरा गोल्डन लोटस उनको लेकर देती है। तो जैसे गोल्डन लोटस देते, नरोत्तम दास को हाथ में लेते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप, सुनहरा स्वरूप वहां पर प्रकट हो जाता है। और देखते ही देखते वो सुनहरा स्वरूप जो है नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर आवेश हो जाता है, अंदर प्रवेश हो जाता है। और जैसे अंदर प्रवेश हो जाता है, पद्मा नदी और जोर से बहने लगती है, और जोर से आवाज करने लगती है। इतने जोर से आवाज करती है कि जो उनके राजघराने में जो पहरेदार जो सोए हुए थे सब उड़ जाते हैं। अरे क्या इतना जोर का आवाज क्या आ रहा है? तो सब लोग भाग भाग कर आते हैं, किधर से आवाज आ रहा है, क्या हो गया नदी में, पद्मा नदी में ऐसा क्या हो गया, इतना क्यों आवाज आ रहा है? तो सब लोग आते भाग भाग कर आते हैं उधर। उधर आकर जब देखते हैं तो एक गोल्डन व्यक्ति पानी के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो बोल रहे गोल्डन व्यक्ति कौन है, इसको तो कभी हमने खेतुरी में देखा नहीं। तो तब कृष्णानंद राय भी भाग कर आते हैं, वो भी देखते हैं, अरे ये कौन है नया व्यक्ति, कभी देखा नहीं गोल्डन कलर का व्यक्ति, सुनहरा रंग का व्यक्ति कभी देखा नहीं। तो देखते ध्यान से देखते कृष्णानंद बोलते, अरे ये तो मेरे बेटे का गहना है, मैंने जो मेरे बेटे को गहने पहनाए थे, जो कपड़े पहनाए थे, वही गहना और कपड़ा दिख रहा, तो ये मेरा बेटा ही है, पर इसका रंग कैसे बदल गया, रंग कैसे बदल गया, सुनहरा, ये तो सांवला है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर थोड़े सांवले रंग के थे, वो सुनहरे रंग के कैसे हो गए? तो ऐसे सोचकर वो बोलते हैं, कैसे हो गए सुनहरे रंग के, तो शायद कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, तो फिर कुछ उनको भूत तो नहीं चढ़ गया इनके ऊपर। तो तांत्रिक वांत्रिक को बुलाते हैं, इनके अंदर से भूत निकालो। तो तांत्रिक वांत्रिक भूत निकालने का प्रयास कुछ नहीं होता है। फिर वैद्य को बुलाते हैं, उनके नाड़ी चेक करो, बोलते हैं कुछ उनका वात वात कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया है। तो उनके नाड़ी चेक करते तो बोले कुछ नहीं, नॉर्मल है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गया? तो ऐसे सुनहरे रंग के क्यों हो गए? और नित्यानंद नरोत्तम दास ठाकुर जब वो उधर से बाहर निकल कर आए, तब से उनके आंखों से कंटिन्यू अश्रु बहते रहता था, और वो श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे बोलते रहते थे। क्या बोलते थे? श्री कृष्ण चैतन्य, बोलो। तो ऐसे बोलते थे, जोर जोर से बोलते थे और अश्रु बहते रहते। अपने तो अश्रु नहीं बहेंगे, अटलीस्ट श्री कृष्ण चैतन्य बोल तो सकते हैं ना। तो बोलते रहते थे। तो ऐसे देखकर, उनके आवेश को देखकर लोग सोचते क्या हो गया इन्हें, कुछ ऐसे तो मेरे बेटे कभी देखा नहीं है। तो तब से चैतन्य नित्यानंद नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में ऐसे लगता था, मुझे कब जाऊंगा वृंदावन, कब मैं जाऊंगा वृंदावन, कब मैं जाऊंगा वृंदावन, ऐसे सोचते रहते थे वो। क्योंकि मालूम था वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के सब पार्षद, सब गोस्वामी उधर ही है। तो सोचे थे मुझे कब जाऊंगा मैं। तो ऐसे सोचते उनको लगता, मैं कब यहां से छुटकारा कब मिलेगा। सोचते वो ऐसे दिन बीतते गए, रोते रहते थे, उनके माता पिता की चिंता होती थी, अरे क्या हो गया मेरे बेटे के साथ। आप सोचो कोई लड़का ऐसे गोल्डन कलर का रहेगा, कैसे रहेगा। तो वैसे लिखते थे वो, लेकिन वो उनका आवेश था, चैतन्य महाप्रभु का आवेश था। तो उसके बाद एक दिन उनके इस तीव्र इच्छा के कारण चैतन्य महाप्रभु फिर उनके सपने में प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को, नरोत्तम तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हो गया, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तो वृंदावन चले जाओ, वृंदावन जाओ और वहां पर जाकर लोकनाथ गोस्वामी से तुम दीक्षा ले लो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश दे देते हैं। तो बोले अब मैं कैसे जाऊं, घर पे तो कड़ी पहरेदारी है, अब मैं कैसे जाऊं, ऐसे सोचते रहते हैं। तो वहां पर आवाजों के राज्य में एक मुस्लिम राजा होता है। तो मुस्लिम राजा को भी सुनाई पड़ता है कि ये संदेश मिलता है कि नरोत्तम दास ठाकुर कैसे नाम के व्यक्ति है, और वो आकर इस प्रकार से पद्मा नदी से उनका जब स्नान करके बाहर निकले तो उनके सांवले रंग का वो गोल्डन कलर के सुनहरे के हो गए, और फिर वो रोते रहते हैं और चैतन्य चैतन्य कृष्ण चैतन्य बोलते रहते हैं, तो इनको मुझे मिलना है। तो वहां से आदेश देते हैं कि कृष्णानंद राय को आपके बेटे को इधर भेजो, मुझे उनसे मिलना है। तो वो बोलते हैं इनको मैं कैसे भेजूं, ये भेजूं तो भाग जाएगा, ये रघुनाथ दास गोस्वामी का रिपीट कहानी नहीं होना चाहिए यहां पर। तो बोलते हैं ठीक है, कड़ी पहरेदारी रखकर सोल्जर्स रखकर वो भेजते जाओ इनके साथ। तो सब साथ में जाते हैं, जाते जाते बीच रास्ते में थोड़ा थक जाते तो सब लोग सो जाते हैं, और वो वो मौका देखकर नरोत्तम दास ठाकुर वहां से भाग जाते हैं। और नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे भागते हैं, उनको मालूम है, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी का कहानी सुना है कैसे वो भी भाग गए, और नॉर्मल रास्ता नहीं लिए, जंगल का रास्ता लिए, कांटे वाला रास्ता लिए, तो ये भी जंगल वाले रास्ते लिए, कांटे के रास्ते लिए, उनके ही पदे रघुनाथ दास गोस्वामी के पदे चिन्हों पर फॉलो करते हुए कांटे के रास्ते, उनके पैर छिल जाता है, उनके पैर में पूरे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो सब परवाह नहीं करते हुए वृंदावन की ओर बढ़ते रहते बढ़ते रहते बढ़ते रहते। बहुत दूर जाने के बाद थोड़े थक जाते हैं, चलो ये रास्ते पे तो कोई आएगा नहीं, थोड़ा सो जाता हूँ करके एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, थोड़ा एक 5 मिनट के लिए आंख बंद करता हूँ, आंख बंद कर अच्छे से सो जाते हैं। जैसे सोते हैं उनको आवाज आता है, राजकुमार आइए हमारे साथ। तो बोलते हैं सपने भी नहीं छोड़ते मुझे, तो आंख खोल के देख सच में गार्ड उनके सामने खड़े रहते, ये तुम मेरे पीछे पीछे कैसे आ गए? बोलते हैं राजकुमार आप तो कभी कभी चलते हैं, हमारा सेवा ही रहता है, दिन भर भागो दौड़ो इधर, तो आपके पद चिन्हों को ट्रैक करते करते हम आप तक पहुंच गए, तो आप चलिए हमारे साथ, ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं देखो आपको लेके जाना है तो मेरे शरीर को लेके जा सकते हो, मैं तो नहीं आने वाला क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं वृंदावन जाने वाला हूँ, आपके पास जो भी तलवार है मुझे काटो और लेके जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तो उनके दृढ़ता को देखकर उनका जो सेनापति रहता है वो भी बहुत प्रभावित हो जाता है, कितना दृढ़ है इस बच्चे के अंदर, क्योंकि उनका साल कितना था, वो कितने उम्र के थे, वो 16 वर्ष के थे सिर्फ, केवल 16 वर्ष में इतना दृढ़ था, क्योंकि वो तो सेनापति है, तो वो बहुत प्रभावित हो जाते, बोलते ठीक है बेटा तुम जाओ, बोल के वो भी कुछ पैसे दे देते, बोलते आगे के सफर के लिए पैसा रख लेना, कुछ सोने की मुद्राएं देकर बोलते जाओ आगे, और छोड़कर वो चले जाते, फिर ये आ जाते इधर। फिर वहां पर रामा कृष्णानंद राय और नारायणी बहुत दुख में रहते कि मेरा हमारा बेटा छोड़ के चला गया करके। फिर नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर वृंदावन की ओर आते रहते हैं, तो जब वो मथुरा के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ संत लोग मिलते हैं, तो वहां पर पूछते हैं मथुरा वृंदावन आ गया है क्या? तो बोलते हैं नहीं, थोड़ी कुछ समय कुछ दूरी पर है। अच्छा तो यहाँ पर कैसे हमारे गोस्वामी लोग कहाँ पर रहते हैं, रूप गोस्वामी कहाँ पर है? तो बोलते वो चले गए। क्या रूप गोस्वामी चले गए? सनातन गोस्वामी वो भी चले गए? अरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी चले गए? तो इनका इतना दुख होता है कि नरोत्तम दास ठाकुर फूट फूट कर रोते हैं और वहां पर ही मूर्छित होकर बेहोश हो जाते हैं। तो फिर वो देखते हैं, वो ब्राह्मण देखते हैं, अरे वैष्णव देखते क्या किया जाए इनको। फिर उनको थोड़े टाइम के बाद उनके ऊपर पानी छिड़कर उनको उठाया जाता है। उठाने के बाद वो बोलते हैं चलो आपको मैं वृंदावन की ओर लेके जाता हूँ, क्योंकि आपको वृंदावन का रास्ता पता नहीं रहेगा और आप जाएंगे तो लंबे रास्ते से जाएंगे, मैं आपको शॉर्टकट से लेके जाता हूँ। तो वैष्णव ब्राह्मण उनको लेकर जाता है शॉर्टकट से वृंदावन लेके जाता है। वृंदावन में जाते हैं वो बोलते हैं मुझे पहले राधा गोविंद मंदिर जाना है, क्योंकि रूप गोस्वामी का इष्ट देव है वो। तो सीधे जाते हैं रूप राधा गोविंद जी को देखते हैं, राधा गोविंद जी के दर्शन के करके रूप गोस्वामी का नाम का चिंतन करते हुए बेहोश होकर गिर जाते। तब वहां पर वैष्णव लोग को मालूम पड़ जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर आए, तो जीव गोस्वामी को जाकर इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर आए यहाँ पर। तो जीव गोस्वामी को पहले से ही बताया होता है, चैतन्य महाप्रभु उनके सपने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहले ही बताए रहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर करके एक व्यक्ति यहाँ पर आएगा, वो चैतन्य महाप्रभु का आवेश लेकर यहाँ पर आएंगे, तब उनको आप ट्रेन करना ताकि वो चैतन्य महाप्रभु का जो ये हरिनाम संकीर्तन है इसको पूरे विश्व में फैला सके, तो आप उनको ट्रेनिंग कीजिए, सब बताया रहते। तो इसलिए नरोत्तम का सब वैष्णवगण जो भी जीवित थे सब लोग वेट कर रहे थे नरोत्तम दास ठाकुर का। इवन लोकनाथ गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु कह के गए होते हैं कि जब वो आएगा तो आपको दीक्षा देना है, और चैतन्य लोकनाथ गोस्वामी ने क्या प्रण लिया रहता है, उन्होंने ये प्रण लिया रहता है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अंतर्दान होने के बाद, उनके जीव त्यागने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मैं आज से कोई शिष्य नहीं स्वीकार करूंगा, ऐसे उन्होंने डिसाइड किया रहता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा था। तभी युवा उधर आते तो जीव गोस्वामी आते आके देखते हैं कि मूर्छित अवस्था पे नरोत्तम दास ठाकुर, तो उनको लेते अपने गोद पर बिठाते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह सहारते हैं। उसके बाद बोलते हैं उसको उठाते हैं, उठाने के बोलते हैं क्या कहाँ से बोलते हैं तुम नरोत्तम दास ठाकुर हो ना? हाँ बोलते हैं। तभी उनका नाम नरोत्तम दास ठाकुर नहीं, उनको साम नरोत्तम रहता है। तुम नरोत्तम हो ना? हाँ नरोत्तम हो। तो बोलते हैं आप कौन है? तो मैं जीव गोस्वामी। ओ आप जीव गोस्वामी है? तो उनके चरणों पर गिर कर वो नमस्कार, एटलीस्ट मैं एक गोस्वामी को तो देख पाया जीव गोस्वामी। और उस समय मतलब इतने स्कॉलर इतने पंडित थे जीव गोस्वामी कि शिल प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर कोई बहुत ही बड़ा विद्वान या पंडित आज तक कोई है, सिर्फ दो ही जन है, एक है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दूसरे है जीव गोस्वामी, इनको कोई भी उनके पांडित्य में हरा नहीं सकता, ऐसे पांडित्य है। तो ऐसे करके वो कहते हैं। तो बोलते जीव गोस्वामी आपको मिला हूं, तो उनको नमस्कार करते हैं, उनके शरण पर शरण चरण पढ़ते हैं। तो उसके बाद जीव गोस्वामी कहते हैं चलो मैं आपको रघुनाथ दास गोस्वामी के पास लेके जाता हूं। अरे रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो मेरे इंस्पायरर है, उन्होंने तो मुझे ये पद दिखाया, मुझे उनको मिलना है, चलो लेकर चलिए जल्दी। तो तुरंत उनको रघुनाथ दास गोस्वामी के पास लेके जाते, रघुनाथ दास गोस्वामी देखते हैं, उनको नमस्कार कर दंडवत करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी आप मेरे इतने प्रेरणा के स्रोत है कि आपकी वजह से मैं घर छोड़कर भाग कर आया, मैं चैतन्य महाप्रभु के शरण पर आप आया मैं, तो आपकी वजह से। तो उनके शरण में जाते और रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बूढ़े हो जाए, 100 साल के ऊपर इतने बूढ़े हो जाते हैं, उनसे मतलब वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, फिर भी वो नरोत्तम दास को आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद बोलते चलो मैं आपको लोकनाथ गोस्वामी के पास लेके चलता हूं। तो बोले अरे लोकनाथ, चलो लेकर चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास आते हैं, तो उनको चैतन्य महाप्रभु कहा रहे थे ना सपने में आपको लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना है करके। तो ये जाते लोकनाथ गोस्वामी के पास, लोकनाथ गोस्वामी को बोलते हैं मुझे आप दीक्षा दीजिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो बोलते अरे दीक्षा की क्या जरूरत है, तुम्हारे में तो चैतन्य महाप्रभु का आवेश है, उनकी कृपा प्रदान प्राप्त हुई है, तो मैं क्या तुम्हें दीक्षा देने वाला हूं, मैं कौन होता हूं तुम्हें दीक्षा देने वाला, चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा नाम नरोत्तम रखा है तो मैं कौन हूं, तो दीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तो बोलते ऐसे कैसे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है बिना गुरु का तो ये संसार को तारण करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे तो गुरु चाहिए। तो नहीं 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 मैं नहीं दे सकता ऐसे बोलना, और मैंने प्रण लिया है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये भौतिक जगत को त्यागने के बाद मैंने ऐसा प्रण लिया मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। तो बोलते अरे ऐसा क्या, तो फिर जीव गोस्वामी साहब क्या कहते हैं, जीव गोस्वामी जी ऐसे ऐसे कहा है लोकनाथ गोस्वामी ने, पर मैं क्या करूं अभी। तो बोलते वैष्णवों का हृदय जीतना है तो उनका सेवा करो, तो जब उनका सेवा करोगे तो उनका हृदय जीतोगे तब उनका कृपा प्राप्त होगी। तो ठीक है तो मैं सेवा करता हूं, क्या सेवा करूं। वो तो ऐसे वैरागी थे लोकनाथ गोस्वामी, कुछ खाते नहीं थे, कुछ पीते नहीं थे, कुछ पहनते नहीं थे, मतलब कुछ जरूरत ही नहीं थी। मतलब कोई अगर अभी राजा रहता है, राजा के पास इतने सेवक क्यों होते हैं, उनके इतने उनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि एक एक चीज के लिए एक एक सेवक पलटता है। वैरागी व्यक्ति को कुछ जरूरत ही नहीं है तो उसको किसकी सेवा की जरूरत है, किसी की सेवा की जरूरत ही नहीं है, तो उन्हें कुछ जरूरत नहीं। तो बोलते क्या सेवा करूं इनकी मैं, तो सोचते रहते क्या सेवा करके क्या सेवा, तो उनको उनके दिनचर्या को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें को दिखता है कि लोकनाथ गोस्वामी हर दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले वो एक जगह पर जाते हैं अपने विष्ठा को त्याग करने के लिए। तो बोलते हैं हर दिन वही जगह पर जाते हैं और वो बहुत गंदा रहता है, तो बोलते हैं मैं जाकर यहाँ पर वो उनके विष्ठा को मैं साफ करूंगा, ये सेवा मैं ले लेता हूं। तो हर दिन सुबह वो देखते थे ब्रह्म मुहूर्त के आने के पहले, मतलब लोकनाथ गोस्वामी आने के पहले ब्रह्म मुहूर्त के पहले वो जाते थे, वो जगह पूरा साफ सुथरा करके अच्छा से रखकर आ जाते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी देखते थे अरे ये क्या है, जगह साफ हो गया, शायद कोई सुअर वर आया रहेगा, ऐसे सोचते हो। फिर बाद में ऐसे चलते रहता है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांच, एक साल हो जाता है, हर दिन हो रहा है। अरे मैं हर दिन एक ही जगह पे जा रहा हूं, हर दिन देख रहा हूं जगह साफ हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि मैं एक दिन यहां पर रुककर देखूंगा कौन क्या कर रहा है करके। तो एक दिन वो विष्ठा त्यागने के बाद वो एक बार एक पेड़ के पीछे से गौर से देखते रहते हैं कि अपने नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर जाकर उस विष्ठा को साफ करके वो अच्छा स्वच्छ करके रखते हैं। तो सीधा जाकर नरोत्तम ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमको किसने अनुमति दी है। तो बोलते हैं तो ये तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो आपको स्वीकार कर लिया हूं, आप भले मुझे दीक्षा दे नहीं दे मैं तो आपका सेवा करते रहने वाला हूं, ऐसे बोल देते हो। तो ये है एक शिष्य का गुरु के प्रति एक प्रेम। कहते अपने प्रभुपाद जी के शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु की भी ऐसी एक स्टोरी है, बहुत ही खतरनाक स्टोरी। तो ब्रह्मानंद प्रभु एक बार प्रभुपाद जी को बहुत ही कफ हो गया था, बहुत बीमार थे, वो लेटे रहते बेड पे, तो बेड पे लेटे रहते थे तो उनको कफ जो निकलता था उसको थूकने के लिए भी उनको उठ के जाना, बेड से उठने का टाइम नहीं था, मतलब उठना शक्ति नहीं थी उनके पास। तो क्या करते थे उनके शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु, तभी उनके क्लोज एसोसिएट थे, मतलब उनके सेवा करते थे, तो उनके पास एक कप लाके रखते थे, कप में वो थूकते थे और उसको फिर बाहर जाकर फेंक के आना पड़ता था। तो एक दिन देखा ब्रह्मानंद प्रभु, वो जब उन्होंने प्रभुपाद जी ने उसको थूका, फेंकने के बाद इन्होंने बाहर जाकर कुछ ही सेकेंड्स में आ गए। तो प्रभुपाद देखिए इतना जल्दी कैसे आ गया ये। फिर एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन, हर बार आके ये मैं मैं जो मेरा कफ बाहर निकाल रहा हूं, ये तो कुछ ही सेकंड में जाके बाहर आ जाते तुरंत, क्योंकि ब्रह्मानंद प्रभु को भास में ही रहना था, वो एक सेकंड भी प्रभुपाद को अलग नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत जाकर आ जाते थे। कैसे जल्दी आता है? तो प्रभुपाद जी ने एक बार चुपके से देखने का प्रयास किया, क्या करते करके अपने, उन्हें तकलीफ हो रही थी फिर भी उठकर जाकर देखते हैं। तो क्या करते ब्रह्मानंद प्रभु, दरवाजे के बाहर जाकर उस कफ को वो खुद पी लेते, बोलते ये महा शुद्ध भक्त का एक ये है, महा है, ऐसे पी लेते उसको। तो बोलते ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे शहर शहर का क्या होगा? तो प्रभुपाद ये आपका महा है, तो ये है मतलब प्रेम, गुरु के शुद्ध भक्त के प्रति प्रेम। तो ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के जो विष्ठा है साफ करते थे, तो इनसे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी इनकी ये सेवा भाव को देखकर उनका हृदय पिघल जाता है और बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ। और वो बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारा नाम तो चैतन्य महाप्रभु ने किया नरोत्तम, तो मैं तो उसे चेंज नहीं करने वाला, तो इसलिए मैं तुम्हारा नाम देता हूँ नरोत्तम दास। तो उनका नाम पड़ गया नरोत्तम दास। फिर जीव गोस्वामी पाद जो उन जब उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे, उनके जो वो इतने एक्सपर्ट थे कि एक बार कुछ पढ़ लेते तो उनको सब ध्यान में रह जाता था, भूलते नहीं थे वो, और फिर वो तुरंत उसको वापस बोल सकते थे, उतना उनका अब्जॉर्प्शन था। तो ये देखकर जीव गोस्वामी ने उनको टाइटल दिया ठाकुर, ठाकुर महाशय। तो ऐसे उनका नाम पड़ा नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, ऐसा नाम उनका पड़ गया। तो हाँ, तो जीव गोस्वामी, हाँ, तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, ये तीनों नेक्स्ट जनरेशन जिनको जीव गोस्वामी ने तैयार किया, किसके लिए? चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पूरे विश्व भर में प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने ट्रेनिंग दिया, हृदय चैतन्य के शिष्य है श्यामानंद पंडित, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं श्रीनिवास आचार्य, और लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर। ये तीनों अलग अलग गुरु है, लेकिन उनके अंदर इतना इतना घनिष्ठ प्रेम था कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। दोनों साथ, तीनों साथ में रहकर सेवा करते हैं, जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण करते हैं, भक्ति शास्त्री मतलब भक्ति शास्त्री नहीं, भगवद गीता, भागवतम, ये सब कुछ पढ़ाई करते हैं। सब पढ़ाई करके वो सब अच्छे से रूप गोस्वामी के सब ग्रंथ, सनातन गोस्वामी के ग्रंथ, ये सब सीख लेते हैं। तो ऐसे वृंदावन में रहते रहते एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर अपने वन में गए रहते ऐसे घूमने, भिक्षु मतलब क्या बताए, मधुकरी करने। तो एक जगह पर जाकर तो थक जाते तो आराम करते, तो उस समय उनके सपने में एक बहुत सुंदर सी एक गोपी आती है, बहुत ही सुंदर, तेज, इतने सुनहरे रंग की गोपी आती है। तो बोलती है ये गोपी, ये माता तुम कौन हो? तो बोलती है मैं राधा रानी। राधा रानी? तो साष्टांग नमस्कार करते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं, ऐसे बोलते हैं। तो तुम मेरे नित्य सेवक हो, हमेशा मेरी सेवा करते रहते हो, कैसे मैं कैसे आपका सेवा करता हूं? अरे तुम तो चंपकलता गोपी की मंजरी, चंपक मंजरी हो तुम। जब भी मैं और कृष्ण रासलीला करके जब हम थककर आते हैं, तो हमारे लिए केसर का दूध गर्म करके लाकर तुम ही देती हो, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा नित्य स्वरूप है, तुम्हारे नित्य सेवा है, ऐसे करके बोलती है। तो नरोत्तम दास ठाकुर खुल जाते हैं उनके, और ये सपना था कि सच था? तो उनको सच लगता है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है, तो उनको स्वरूप उनको मालूम पड़ गया। तो कैसे मैं इसको कंफर्म कैसे करूं? तो सीधे लोकनाथ गोस्वामी के पास जाते, अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास जाकर तो गुरु गुरु जी मुझे ऐसा एक सपना आया, क्या है सच है? तो लोकनाथ गोस्वामी, हाँ ये सच है, तुम चंपक मंजरी हो, तुम्हारा नित्य सेवा यही है। तो तब से वो अपने अपने नित्य सेवा में वो ध्यान करने लगते हैं। जब भी वो भगवान का नाम श्री कृष्ण चैतन्य, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जब करते करते वो जब करते रहते थे, वो समाधि में चले जाते थे। और समाधि में क्या करते थे वो? उनका जो नित्य सेवा है वो करते थे, गर्म दूध बनाते थे और राधा कृष्णा को सेवा करते थे। तो एक दिन ऐसे अपने समाधि में बैठते हुए वो ये गरम दूध बनाते हैं, और उसको चूल्हे से निकालने के लिए उनके आजूबाजू में कपड़ा नहीं होता है, हाथ से उतार देते और हाथ जल जाते हैं उनका, सच में हाथ जलता है। समाधि में जो उनका होता है हाथ, सच में आंख खोल के देखते हैं उनका हाथ जला हुआ रहता है। तो हाथ जला हुआ, ये कैसे हो गया? तो उनको बहुत विश्वास नहीं होता है। फिर भी वो चीज कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये किसी को मालूम पड़ गया तो उनका ख्याति बढ़ जाएगा ना, लोग बोलेंगे अरे नरोत्तम दास ठाकुर सपने में उन्होंने ऐसा किया और सच में उनके हाथ में हो गया, कितने महान भक्त है, कितने महान भक्त है। माधवेंद्रपुरी के लिए जब खीर चुराया गया तो भाग गए, उनको ख्याति नहीं चाहिए थी, यश नहीं चाहिए तो भाग गए। उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर को यश नहीं चाहिए था, मेरा नाम नहीं फैलना चाहिए, तो किसी को बता नहीं, चुपचाप आ जाते। लेकिन जीव गोस्वामी उनके हाथ को देख लेते, बोलते क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं दिखाओ दिखाओ मुझे, थोड़ा हाथ, तुम्हारे हाथ को थोड़ा मसाज करना है। नहीं 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 मुझे मुझे मसाज नहीं चाहिए। नहीं दिखाओ दिखाओ। तो हाथ लेते हैं, तो हाथ लेकर देखते हैं, ये तुम्हारा सेवा का फल है, इसे मैं सेवा, इसका मैं सेवा करूंगा। ऐसे बोलकर जीव गोस्वामी खुद उनके हाथ में मलम लगाते हैं, पट्टी लगाते हैं। फिर ये तो फैल जाता है, क्योंकि जीव गोस्वामी को पता चलता है, फिर लोकनाथ गोस्वामी को पता चलता है, तो इनके बारे में सबको पूरे वृंदावन में फैल जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर को सपने में जो उनका हुआ था, सचमुच में उनके हाथ में वो जल गया, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो सब लोग, तो लोग आकर बोलते हैं, नरोत्तम दास को अपने हाथ छुपाते हैं, ऐसे लोग आकर बोलते हैं, अरे ठाकुर महाशय थोड़ा आप मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो ना, आपके हाथ से आशीर्वाद दे दो, आपके हाथ से कपड़े दे दो, आपके हाथ से ये दे दो वो दे दो, उनके हाथ से वो कुछ लेना चाहते थे, उनके हाथ में राधा रानी की सेवा करते, उनके हाथ जल, तो हाथ से सेवा ले, उनके हाथ से आशीर्वाद लेना चाहते थे, तो इसलिए बार बार बोलते, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। तो ऐसे उनकी लीला चलती थी वहां पर। फिर एक बार श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर गोवर्धन में परिक्रमा कर रहे थे, परिक्रमा करते करते थक गए और एक जगह पर वापस वो लेट गए, थोड़ा सो गए। सोने के बाद उनको सपने में एक गोपा आया, छोटा सा गोपा, आके बोला बहुत थक गए लगते हैं आप लोग, ये लो मटकी भर के छाछ पी लो। तो दोनों का आंख खुल जाता है, आंख खुल जाता है, दोनों को एक ही सपना आया रहता है, दोनों के सपने में एक गोपा आया रहता है और दोनों को एक मटका में छाछ दिया रहता है और दोनों के हाथ में मटका रहता है। तो बोलते सच में मटका है, ये कैसे आ गया? तो बोलते चलो छाछ पी लेते, कोई तो दिया है। तो छाछ पीते ऐसा अमृतमय छाछ रहता, बोलते आज तक मैंने वृंदावन में कभी ऐसा छाछ पिया ही नहीं है, कहां से आया ये छाछ? तो वो सीधे आते हैं अपने जीव गोस्वामी के पास आते हैं, बोलते हैं हमने आज जैसे गोवर्धन परिक्रमा करते ऐसा कुछ हुआ है? तो बोले अरे वो गोपा और कोई नहीं थे, साक्षात भगवान कृष्ण थे, श्याम सुंदर थे, तुम्हारे सपने में आकर तुमको छाछ दिए थे, तुमने, तुमको पता नहीं चला? अरे क्या बात करे, श्याम सुंदर थे। तुरंत वापस भागते हैं गोवर्धन के पास, क्योंकि वो मटका छाछ पीकर मटका उधर ही छोड़ के आ गए थे। वापस जाते हैं उधर और मटका लेते, मटका तोड़ तोड़ के खाते वो, क्योंकि चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण के हाथों को स्पर्श करके वो मटका दिया गया है उनको, तो मटका थोड़ी फेंक सकते। माधवेंद्रपुरी भी जब चैतन्य महाप्रभु खीर चोर गोपीनाथ जी ने उनका जिले मटका जो खीर छुपा के रखा था, उन्होंने साक्षात गोपीनाथ ने छुपा के रखा ना अपने हाथ से, तो हर दिन वो मटके को तोड़ तोड़ के खाते थे। तो उन्हीं के बदे चिन्हों पर चलते हुए ये भी हर दिन मटका तोड़ के खाने लगे श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर। तो ऐसे मतलब शुद्ध भक्तों के सपने भी सच सपने होते हैं, और अपने अपना जो कुछ भी सच को, जो हमारे सामने जो कुछ भी सच हो रहा है वो सब सपना है अपना। भौतिकवादियों के लिए क्या बोलते हैं, जो भी हमारे लिए रियलिटी है वो एक्चुअली ड्रीम है, लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए उनका जो ड्रीम है वो रियलिटी है, ये है फर्क। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम ठाकुर के ऐसे इनकी लीला होती थी। और एक बार जीव गोस्वामी ने इनका सब शिक्षण ग्रहण हो गया, इनका सब तो तैयार थे, तो जीव गोस्वामी अचानक से एक दिन इष्ट गोष्ठी बुलाते, सब लोग आ जाओ, सब आचार्य को आ जाओ इष्ट गोष्ठी करेंगे। तो बोला क्या हो गया अचानक इष्ट गोष्ठी? बोलते आज हमने डिसाइड किया है कि हमारे तीन प्रमुख शिष्य श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, वो हमारे सब आचार्यों के पुस्तकों को लेकर बंगाल में जाएंगे और प्रचार करेंगे। तो ये सब एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, अरे ये क्या है, सेम ऐसा ही सीन हुआ था 2009 में, नहीं 2010 में जब हमारा बैच चौपाटी में बैठा था, चौपाटी में हम लोग बैठे थे, हमको महाराज सबका इष्ट गोष्ठी में बुलाया गया, इष्ट गोष्ठी में हम सब बैठे थे, महाराज ने अच्छा सुंदर एक घंटा क्लास दिया, हम लोग सब सुन रहे थे अच्छे से। फिर महाराज ने बोला ये जो बीटी बैच जो पास आउट हो रहा है वो गोवर्धन को विले जाएगा। तो सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, अरे कौन जाएगा, मैं जाऊं तुम जाए, कौन जाएगा? क्योंकि ये शौक था, किसी को मालूम नहीं था, ये सरप्राइज हो गया था, उसी प्रकार ये भी इनको सरप्राइज था। तो फिर ये लोग बोले ठीक है। तो फिर वो पूरा बैलगाड़ी भर के सब आचार्यों के पुस्तकों को भर के उनको भेजा गया। तो पुस्तक उस्तक लेके निकल रहे थे, तो निकलते निकलते एक जगह पर आए, तो वहां पर थोड़े सो रहे थे। तब तक बीरम बीर करके वहां का जो राजा था वो डकैत भी था, उसने इनका पूरा चुरा लिया था, क्योंकि उसको एक संदेश मिलता है कि उनके ज्योतिष से कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना इनके पास है, ये लेके जाओ। तो लेकर चले जाते हैं वो। तो ये सुबह उठकर देखते हैं, अरे हमारे आचार्यों की पुस्तकें गायब हो गई, हम क्या करेंगे? क्योंकि इनका क्या प्लान था, ये आचार्यों के पुस्तकों को लेकर जाकर इनको हाथ से कॉपी करके इसका तभी कुछ प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हाथ से कॉपी करके इसको पब्लिश करना था, सबको बांटना था। तो अभी क्या करेंगे, सब चला गया। तो श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर श्यामानंद पंडित को कहते हैं, आप लोग आगे जाओ, मैं यहाँ पर रहकर इसका ढूंढ कर मैं उसको लेके आने का प्रयास करता हूँ। ऐसे करके श्रीनिवास रह जाते, बाकी ये दोनों चले जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर खेतुरी ग्राम आने आते रहते हैं, तो बोट से क्रॉस करते रहते हैं। तो बोटमैन को पूछते हैं, मतलब नाव चलाने वाले को पूछते हैं, क्यों भाई यहाँ पर कृष्णानंद राय और नारायणी माता कैसे है? तो बोलते हैं, अरे क्या बताऊँ, बहुत ही दुखी है, जब से उनका बेटा इतना कठोर हृदय वाला लड़का उनको छोड़कर चला गया, रोते रहते, कुछ नहीं करते, खाते नहीं है, पीते नहीं है, कैसा निष्ठुर व्यक्ति है वो, ऐसे उनको बोलते हैं। अच्छा आपको पता है निष्ठुर व्यक्ति कौन है? कौन है? मैं ही हूँ। अरे आप है? अरे लेकिन आप तो ठाकुर महाशय है। हाँ मैं ही हूँ ठाकुर महाशय, मैं ही हूँ नरू। अरे नरू, आप ही नरू है? तो इतने जोर जोर से नाव को चलाना, जल्दी जल्दी लेके जाना चाहते हैं, तो जल्दी जल्दी नाव चला कर लेकर आता है और बोलता है, हमारे नरू आ गए, हमारे नरू आ गए, हमारे नरू आ गए। तो गांव में सब कृष्णानंद राय और नारायण, अरे हमारा नरू आ गया। तो सब भाग भाग, सब गांव वाले खेतुरी वाले भाग भाग कर आते हैं, नरू आ गया, नरू आ गया। और आकर देखते हैं, अभी नरोत्तम दास ठाकुर तो पूरे सन्यासी वेश में, हाथ में कमंडलू शिखा धारण किए हुए हैं और पुस्तक उस्तक लेकर आए। तो माता सोचती है कि क्या करूं, पास में जाके इसको गले लगाऊं कि नहीं लगाऊं? पिता सोचते हैं, आगे जाके गले लगाऊं कि नहीं लगाऊं? दूर से क्या करूं, नमस्कार दंडवत करूं कि नहीं करूं? अभी सन्यासी वेश में सन्यासी को दंडवत करूं कि नहीं करूं? पास जाके गले लगाऊं कि नहीं लगाऊं? तो ऐसे वो सोचते रहते हैं, माता पिता दोनों, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या करे। तो नरोत्तम दास ठाकुर इनकी दुविधा को देखकर सीधे आ जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, दोनों के माता पिता में चरणों को पकड़ लेते हैं, मुझे क्षमा कर देना, ये मेरी मजबूरी थी कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना था, ये उनकी इच्छा है तो इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ, ऐसे करके वो चले जाते हैं। फिर वो दोनों साथ सब रहते, फिर नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर प्रचार करने चालू कर देते हैं। तो उनका भाई रहता है, नरोत्तम दास ठाकुर के एक छोटे भाई भी थे जिनका नाम था संतोष राय, उनको राजा बना दिया जाता है। तो संतोष राय जो थे वो बोलते, नरोत्तम दास ठाकुर मेरे बड़े भाई, आप आ गए तो राज सिंहासन ले लीजिए। तो बोलते, नहीं नहीं मैं एक सन्यासी, मुझे क्या करना है, तुम ही रहो, तुम अच्छे से राज करो और सबको ख्याल रखो, भक्ति का प्रचार करो, मेरे प्रचार में तुम मदद करो, ऐसे करके उनको बोल देते हैं। फिर संतोष राय को भी वो दीक्षा दे देते हैं, कि छोटे भाई उनसे दीक्षा ले लेते हैं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर पूरे समाज में ऐसे उनका प्रचार होता है कि पूरे खेतुरी ग्राम के आजू बाजू के गांव में सब जगह पर ऐसा हरिनाम फैल जाते, हर घर पे भागवत, हर घर पे भगवद गीता, हर घर पे हरिनाम चलते रहता है। तो ऐसे चलते रहता तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों? ब्राह्मण लोग सोचते हैं, अरे हमारा धंधा चौपट हो गया है जब से नरोत्तम दास ठाकुर आया है, हमारा कोई यज्ञ कोई हमसे करवाता नहीं है, हमसे कोई किस कोई भी प्रकार का संस्कार कराते, जो भी है हरे कृष्ण मंत्र गाओ, जो भी है कीर्तन करो, अरे क्या है हमारा, कुछ है कि नहीं, कुछ हमारा वैल्यू है कि नहीं, ऐसे सोचने लगते हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि नरोत्तम दास जो बहुत प्रभावशाली थे उनका प्रचार। तो वो ब्राह्मणों का जो हेड था वो बोलता है, मैं कुछ करूंगा इसके लिए। तब तक उसके सोचते रहता है, तब तो वो अपने बेटों को बोलता है, हरिनाम और हरिकथा, उसके दो बेटे रहते हैं, हरिनाम और हरिकथा, नाम हरिनाम हरिकथा, लेकिन रुचि नहीं हरिनाम हरिकथा में। और हरिनाम हरिकथा को बोलते है, जाओ बाजार में जाकर एक बकरी लेकर आओ, आज शाम को और काली को हम बकरी चढ़ाएंगे और उसको हम खाएंगे। ये ब्राह्मणों का हेड था ये। तो बोलते है, ये क्या है? तो बच्चे सोचते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, क्यों बचपन से उन्होंने यही देखते आए। तो बोलते चलो, तो जाते हैं और बाजार से बकरी खरीदते हैं, बकरी खरीद कर वो चल के आते रहते हैं। नरोत्तम दास को मालूम पड़ जाता है ये दोनों ब्राह्मण के बेटे ऐसे करने वाले, तो क्या करते हैं, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो तो रामचंद्र कविराज उनके साथ ही रहते प्रचार करने में, तो उनके साथ वो चलते चलते रहते और बोलते हैं, अरे रामचंद्र पता है क्या तुम्हें, जो भी बकरी को काट के खाता है ना वो अगला जन्म वापस बकरी हो जाता है। तो ये बेचारा हरि नाम हरि कथा कभी सुना ही रहता है, ऐसा फिलोसफी। तो बोलते क्या, अगर मैं इनको काट के खाऊंगा तो मैं भी बकरी बन जाऊंगा, तो बहुत डर जाते, अरे ये क्या है। फिर थोड़े आगे जाते देते रहते तो वापस ये बोलते, मतलब ये उनको डायरेक्टली बोल नहीं रहे, नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज से बोल रहे ताकि वो लोग सुन सके अच्छे से। फिर आगे जाके बोलते, अरे रामचंद्र तुमको बताया क्या भगवद गीता में कहा है, क्या क्या गया है, जिनकी मति मारी गई है ना वही देवताओं की पूजा करते हैं, काली इनकी उनकी। तो बोलते क्या, काली माँ की पूजा करने वाले मति मारी गई है। तो बोलते अरे, तो सीधा नरोत्तम दास के पास आते हो, बोलते अरे आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, मैंने आपने कहा कि बकरी को काटेंगे तो वो बकरी बन जाएंगे, भगवद गीता में कहा है कि बहुत मति मारी गई है जिनकी वही देवताओं की पूजा करते हैं। हाँ तो क्या हो गया, नहीं हमको तो हमारे पिता ने कहा है बकरी लेके आओ मारने के लिए, काली को चढ़ाने के लिए, बलि देने के लिए। हाँ तो ऐसे तो होने वाला ही है, तो मैं क्या करूँ, तो बकरी को वापस बाजार में दे के आ जाओ, और पैसे का क्या करूँ, पैसों से वैष्णव की सेवा करो। ठीक है, तो वो जाता है बकरी को बाजार में बेच देते हैं, वापस पैसा जो मिलता है उसे वैष्णव की सेवा करते हो, घर आता है। तो उसके पिताजी पूछते, अरे किधर है बकरी, बकरी बकरी तो मैंने बेच दिया, पैसे पैसे से वैष्णव की सेवा कर दी, क्या हो गया तुम्हें। तो बोलते हैं नहीं हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो बोले कि बकरी को खाएगा काटेगा तो वो भी बकरी बन जाएगा, और मंद मक्ति बुद्धि वाले ही ऐसे करते हैं तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। कौन कहा तुमको ऐसे, नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा। अरे मेरे घर पे भी आ गए नरोत्तम दास ठाकुर, मेरे घर का भी पीछा नहीं छोड़ा, तो उसे कुछ तो करना पड़ेगा। तो तुरंत वहां के राजा को जाकर बोलते हैं, राजा तो अभी ये जो इनके बेटे होते हैं नरोत्तम दास ठाकुर से वो दीक्षित ले लेते हैं, और उनका नाम क्या होता है, गंगा नारायण चक्रवर्ती। यहाँ पर है ना गंगा नारायण चक्रवर्ती, नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य है, जो ब्राह्मण के पुत्र है हरि नाम। ठीक है, तो ये गंगा नारायण चक्रवर्ती बन जाते हैं। फिर उसके बाद से वो अपने पिता का फॉलो नहीं करते नरोत्तम दास ठाकुर का, हरिनाम संकीर्तन में भाग लेते। फिर ये ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो जाता है और जाकर राजा को कंप्लेन करता है, आपको मालूम है नरोत्तम दास ठाकुर ने आपके राज्य में क्या कर दिया है, सब जगह हरी 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 पागल की तरह नाचते रहते हैं लोग, क्या हो गया इनको पता नहीं, कुछ वैदिक संस्कार कुछ फॉलो करने कुछ है ही नहीं इधर इनके लोगों में, नरोत्तम दास ने पूरा बुरा हाल कर दिया है। तो मंत्री बोलता है नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर बहुत अच्छे व्यक्ति है, सन्यासी है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, देखा आपके दरबार के अंदर भी देखो मंत्री को भी उसके ब्रेन वॉश कर दिया है। तो दूसरा मंत्री बोलते हैं नहीं, वो जो भी गलत कर रहे एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर बहुत अच्छे व्यक्ति है, अरे आपके राज्य के अंदर देखो सब मंत्री उनका पक्ष ले रहे हैं, तो देखो आपका क्या हाल हो जाएगा, तो आप कुछ तो कीजिए नरोत्तम दास ठाकुर का, कोई ऐसा आपका विद्वान पंडित व्यक्ति भेजिए जिससे कि नरोत्तम दास ठाकुर का गर्व चूर हो जाए। तो बोलते मेरे राज्य में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, रूप नारायण चक्रवर्ती जो पंडित है, उसको मैं भेज सकता हूँ, ऐसे करके रूप नारायण चक्रवर्ती को दिखाते हैं। तो ऐसे जब दिखाते हैं तो हंसते हो हंसो तो हंसते हो, तो मतलब हंसते तो लगता है कि हाँ इनके हंसी से ऐसा मालूम पड़ता है कि सच में बहुत पंडित है, इनके सामने कोई टिकेगा नहीं लगता है, चलो चलो लेके चलते हैं। तो रूप नारायण चक्रवर्ती को लेते हैं और सब ब्राह्मण लोग जाते हैं। जाते जाते तो हमारे ये जो गंगा नारायण चक्रवर्ती जी है तो उनको मालूम पड़ जाता है कि उनके पिताजी ने ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा है, तो गंगा नारायण चक्रवर्ती उनके रास्ते पर ही, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर के घर के जाने के रास्ते में बीच में वो एक छोटा सा बाजार लगा देते, किसका, मटके का और पान का बाजार लगा देते हैं, और बैठे रहते उधर। तो ये लोग आते बोलते अरे नरोत्तम दास घर किधर है, तो बोले हाँ किधर जाना है आपको, तो नरोत्तम दास क्यों जाना है, नहीं उनके साथ हमको थोड़ा डिबेट, रूप नारायण आए हैं उनके साथ डिबेट करना है। अरे उतना दूर क्यों जाना है, पहले मेरे से करो डिबेट उसके बाद आप ये जाओ बोलते। अच्छा ठीक है चलो आपसे करते। तो ये जो गंगा नारायण चक्रवर्ती जो होते हैं उन दो का उन ब्राह्मणों का ऐसा गर्व चूर कर देते, उनके सब भैंसों को तहस नहस कर देते, तो उनका पूरा गर्व चूर हो जाता है। तो बोलते यार कौन हो भाई तुम, तो बोलते मैं नरोत्तम दास ठाकुर का शिष्य हूं। तो बोलते तुम ही ऐसे हो तो नरोत्तम दास ठाकुर के पास क्या जाएंगे हम, जाके क्या बात करेंगे। तो रूप नारायण चक्रवर्ती जो हंसते रहते, हाँ हाँ हंसते पहले जैसे हंसे वैसे हंसते। तो बोलते तुम हंस क्यों रहे, हम तो हार गए और तुम हंस रहे हो, तुम हमारे पक्ष में हो कि उनके पक्ष में हो। बोलते भाई मैं कौन हूं बताए क्या, तो कौन है, मैं रूप नारायण चक्रवर्ती, वही रूप नारायण चक्रवर्ती जो 40 साल पहले जब मैं वृंदावन में गया था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को चैलेंज करने के लिए, तब जीव गोस्वामी ने मेरे गर्व को चूर चूर कर दिया था। तो जब उस समय हुआ इतिहास जो उस समय घड़ा, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के शिष्यों ने मुझे हराया था, उसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्यों ने आपको हराया है, वही सोचकर मैं हंस रहा हूं। इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तुमको समझ में आ जाता है, अरे हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर उधर से वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद टाइम है ना, अरे 8:20 हो गया, ठीक है, लास्ट पास टाइम थोड़ा सही है। तो इसके बाद क्या होता है, नरोत्तम दास ठाकुर फिर हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ऐसे प्रचार करते करते उनका पूरा ख्याति फैल जाता है, सब जगह पर लोग उनके गुणगान करने लगते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होता जहां पर हरिनाम नहीं होता, ऐसे चलते रहता है। तो बाजू में एक राज्य में एक राजा होता है, उस राजा का एक पुत्र होता है, उसका नाम रहता है चंदन रॉय। तो ये चंदन रॉय जो रहता है, ये राजा का पुत्र भी रहता है और ये डकैत भी रहता है, हाँ, चोरी करने का ये सब भी काम करते रहता है। तो एक दिन एक तांत्रिक क्या करता है, ये चंदन राय के मतलब कार्यों से बहुत त्रस्त होकर वो उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस को छोड़ देता है, ब्रह्म राक्षस को उसके अंदर उसके शरीर में प्रवेश करा देता है। जो ब्रह्म राक्षस के अंदर चले जाते हैं तो ये पागलों की तरह चिल्लाता है, कूदता है, मारता है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो लोग डरते, क्या हो गया, राजा सोचते हैं इसको क्या किया जाए, ब्रह्म राक्षस को क्या किया जाए। तो बुलाते हैं तांत्रिक को, निकालो ब्रह्म राक्षस को। तो ऐसा भस्म लेके उसके ऊपर डालता है, कुछ नहीं होता है, वो हंसता है। और वो उल्टा ब्रह्म राक्षस जो तांत्रिक को ही मारने चला जाता है, तुझे ही खा जाऊंगा बोलता है। तो बोलते हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये ब्रह्म राक्षस तो हमें ही का। तो बाद में लोग सोचते हैं क्या किया जाए, अलग अलग प्रकार के तांत्रिक ये वो लाते, कुछ नहीं होता है। तो बाद में राजा ही जाकर उस ब्रह्म राक्षस के पैर पड़ता है, बोलते हैं भाई तुम मेरे बेटे के शरीर से कब जाओगे, कैसे जाओगे, कुछ तो उपाय बताओ। तो बोलते हैं मैं एक ही शर्त पे जाऊंगा, मैं उन शरीरों पे जाता हूं जो बहुत ही पाप करते हैं, जो बहुत सारे पाप कृत्य करते हैं उनके शरीर में प्रवेश करता हूं। ये चंदन राय ने इतने पाप कृत्य किए इसलिए मैं इसके शरीर में हूं, अगर इसके शरीर से मुझे जाना है तो जाओ नरोत्तम दास ठाकुर को लेके आओ, उनके चरण को मेरे सिर पर जब वो स्पर्श करेंगे तब मैं इसका शरीर छोड़कर जाऊंगा। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर को बुलाने के लिए बोलते हैं, और बुलाते नरोत्तम दास ठाकुर आते हैं उधर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब उधर आते हैं, वो आकर देखते हैं कौन है भाई, तुम क्यों इसके शरीर में प्रवेश किए हो। तो वो बोलते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर आपके दर्शन देकर मैं पवित्र हो गया करके वो साक्षात नमस्कार कर देते हैं, दंडवत कर देते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके सिर पर पैर रखते हैं, जैसे उनके सिर पर पैर रखते हैं एक दिव्य स्वरूप उसके अंदर से बाहर निकलता है। वो आकर उस ब्रह्म राक्षस जो था उसका और जो चिन्मय स्वरूप था, चिन्मय स्वरूप बाहर निकलता है, नरोत्तम दास ठाकुर दंडवत करता है और वहां से वो निकल जाता है। तो सब लोग नरोत्तम दास ठाकुर की ऐसी मिरेकल, ऐसे जो उनकी जो लीला है देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और लोग उनके जय जयकार कर रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय, नरोत्तम दास महाशय की जय, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय, सब बोलते रहते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे चलते रहते हैं। और फिर ये जो चंदन राय जो होता है ये भी इनसे दीक्षा ले लेता है, नरोत्तम दास ठाकुर से दीक्षा ले लेता है। और दीक्षा लेने के बाद ये चंदन राय जो रहता है, इसके जो शत्रु तो बहुत लोग थे क्योंकि बहुत लोग का इसने कष्ट दिया था। तो एक दुश्मन जो होता है चंदन राय, जब ये सब पाप कृत्य छोड़ देता है, भक्त बन जाता है, उसको पकड़ के जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद उसको टॉर्चर करते रहता है। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, इसको छुड़ाने के लिए एक तांत्रिक को बोलते हैं ऐसे कुछ मंत्र बताओ जिससे वो अदृश्य होकर वो जेल से बाहर निकले। तो ये जाकर वो देवी देवताओं का मंत्र लेके बोलते हैं उसको, तुम ये मंत्र बोलो तुम जेल से अदृश्य होकर बाहर निकल जाओगे। तो बोलते हैं कि मैं कोई भी मंत्र का जाप नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करूंगा जो मेरे गुरु नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने दिया है, वही मैं जप करूंगा। ऐसे करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही जप करते रहते हैं। और इनके 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 स्वभाव में इतना परिवर्तन देकर वो जो शत्रु भी उसका भी हृदय बदल जाता है, बोलते हैं अरे तुम्हारे में इतना बदलाव आ गया, तो उसको रिलीज कर देता है। फिर चंदन राय आ जाते हैं, फिर नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसे सेवा करते करते रहते हैं, और एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर जब उनको समझ में आता है कि मेरा जो कार्य था मैंने संपन्न कर दिया है, तो अब मुझे मेरा लीला समाप्त करनी है, तो गंगा में जाते हैं। गंगा में जाकर श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे नाम जप करते करते जब गंगा में प्रवेश करते हैं, उनका शरीर दूध के स्वरूप में पिघलते हुए गंगा में मिक्स हो जाता है, मिल जाता है। और गंगा नारायण चक्रवर्ती सब पार्षदगण देखते हैं, तो तुरंत गंगा नारायण चक्रवर्ती जहां पर उन्होंने अपने शरीर को दूध स्वरूप पिघला कर अपने पानी में बहा दिया, जब गंगा में बहा दिया, वहां से वो जल उठाते हैं और सब भक्तों के ऊपर छिड़कते हैं, बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय, नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो ऐसे हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, उन्होंने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं, प्रार्थना, ऐसे बहुत सारे भजन से जो हमारे भागवत, जिनको श्रीमद् भागवतम के संस्कृत श्लोक पढ़ने नहीं आते, भगवद गीता के संस्कृत श्लोक पढ़ने नहीं आते, उनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत ही सरल रूप में बंगाली लैंग्वेज में इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भजन लिखे, और ये भागवतम, हमारे भगवद गीता, हमारे सब शास्त्रों का सार उन्होंने इस सॉन्ग्स में, भजन में दे दिए। से भजन गाकर हम हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं, जी भजन को मनन करते हुए हम हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की चरित्र है। नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र के बारे में जैसे मैंने कहा था, इजोलिनस राधानाथ स्वामी महाराज ने 6 घंटे के लेक्चर दिए थे खेतुरी ग्राम में। हम तो उतना नहीं दे सकते, मैं बोल नहीं सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं, शायद आप सुन सकते होंगे, मैं तो बोल नहीं सकता, अभी मेरा गला गया, तो ऐसी हमारी हालत है। तो ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में चर्चा करना, ये हमारे क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन हमारे प्योरिफिकेशन के लिए हम लोग ये ऐसे उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके बारे में बोलने से सुनने से हमारा हृदय परिवर्तन हो सकता है। कभी न कभी ऐसे सुनते बोलते सुनते बोलते एक न एक दिन तो उनके जो गुण है हमारे हृदय में किधर ना किधर इधर उधर चिपका हुआ है, वो निकल कर बाहर आ जाए और हम उनके पद चिन्हों पर फॉलो कर सकें। तो ऐसे हम नरोत्तम दास ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हम जिस प्रकार से उनके पास जो कृष्ण प्रेम थी, कृष्ण प्रेम के जो आवेश में थे, वो कृष्ण भक्ति का जैसे प्रचार करते थे, वो उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी कृष्ण भक्ति का जो भक्ति का जो बीज है वो अच्छे से फले फूले, और इसको हम हमारे पास ही न रखते हुए बाकी लोगों को भी प्रचार करें, बाकी लोगों को भी दे, ऐसे प्रार्थना करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर के इस चरित्र के जो लीला स्मरण को जो हमने अभी किया है, इसको विराम देते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। अभी आरती होगा, आरती के बाद सबके लिए द्रोण प्रसाद दिया जाएगा। पानी नहीं आ रहा। कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? कुछ पता है नहीं।